कोई हीरा है कोई पत्थर, धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है।
नमस्कार दर्शकों, इस मिलियन की यात्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य जीवन के कई पहलू होते हैं, पर जब हम मनुष्य जीवन में सुख शांति की बात करते हैं तो हम उन सभी पहलुओं को सम्मिलित करके सर्वांगीण रूप से उसकी चर्चा करते हैं और तब हम उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मनुष्य जीवन में सुख शांति तभी आ सकती है जब हम उसके आधारभूत नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाते हैं, वरना जीवन में तनाव, द्वेष, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा जैसी स्थितियां पैदा हो सकती है। तो आज हम जिस मूल्य की चर्चा करने जा रहे हैं, उस मूल्य के बगैर हमारा सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और चारित्रिक उत्थान संभव नहीं है, और वो मूल्य है सद्भावना, हार्मनी, द वर्च्यू ऑफ हार्मनी। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित है बीके नीना बहन। नीना बहन नमस्कार, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, बीके नीना बहन बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हुई है और पिछले 20 वर्षों से समर्पित रूप से इस संस्था में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप कॉरपोरेट सेक्टर्स में भी जाकर समय प्रति समय अलग अलग विषयों पर, जैसे टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट आदि विषयों पर जाकर लेक्चर्स देती रही हैं। तो आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। दीदी, जैसे हम सद्भावना, हार्मनी इस विषय पर, इस मूल्य को लेकर आज हम चर्चा करने बैठे हैं, तो सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ जानना चाहेंगे कि व्हाट इज हार्मनी, हार्मनी क्या है?
जी हाँ, हार्मनी, सद्भावना शब्द ही बहुत सुंदर है और हार्मनी शब्द अपने आप में ही एक अर्थ को लिए हुए है।
जी,
जिस प्रकार से आप देखेंगे एक कलाकार अपने सामने बहुत सारे रंगों को लेकर के बैठता है, लेकिन अपनी मूर्ति में उन्हीं रंगों को स्थान देता है जो उसकी मूर्ति को जीवंतता प्रदान करे।
बिल्कुल सही।
और सबके आकर्षण का केंद्र उसे बना सके।
जी बिल्कुल।
तो आज हमारी इस चैतन्य मूर्ति का सबसे बड़ा आकर्षण कहें ये सद्भावना या हार्मनी है।
जी बिल्कुल, इसका शाब्दिक अर्थ बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं?
जी, हार्मनी माना जी बी हैप्पी, हार्मनी माना वर्किंग टुगेदर,
जी
हार्मनी माना इट्स अ फ्लो ऑफ लाइफ।
बिल्कुल।
और हमारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी हमेशा कहा करती थी, हार्मनी माना हार मान लो, हार मान लो माना झुक जाओ, झुकना माना नम्रता।
जी।
और वो नम्रता भी एक बहुत बड़ा गुण है।
जी।
और जब हम झुकते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है।
बिल्कुल।
इसलिए कहा जाता है झुकता वही है जिसमें जान होती है।
जी।
अकड़े रहना तो मुर्दे पहचान होती है।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अपने आसपास के वातावरण में सद्भावना अगर हम लाना चाहते हैं, हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है सबसे पहले हम अपने अंदर स्वयं में हार्मनी को पहले क्रिएट करें। तो हम अपने अंदर स्वयं में हार्मनी कैसे ला सकते हैं, क्या क्वालिटीज की जरूरत है इसके लिए?
जिस प्रकार से एक ये हार्मनी
जी
सद्भावना शब्द कहें, इसकी आज हमें भी आवश्यकता है, परिवार में भी आवश्यकता है, समाज में भी आवश्यकता है, तो सारे विश्व में आवश्यकता है।
जी।
लेकिन इसकी शुरुआत हमें करनी है अपने आप से,
खुद से। जी।
इसलिए कहते हैं खुद को बदलेंगे तो जमाना बदलेगा। उस जमाने को बदलने की शुरुआत हमें करनी है अपने आप से।
जी।
तो सबसे पहले वो हार्मनी सद्भावना चाहिए मेरे स्वयं के अंदर। जब मेरे स्वयं के भीतर वो सद्भावना होगी, हार्मनी होगी, तब उसके वाइब्रेशन हम चारों ओर फैला सकेंगे। आज संसार में भी देखिए जिस प्रकार से शब्दों में सद्भावना होती है, तो वो शब्द गीत बन जाते हैं
जी।
जिस प्रकार से आप देखिए वाद्यों में सद्भावना होती है तो शोर एक मनोरंजन बन जाता है
जी।
वो शोर संगीत बन जाता है।
सही कहा।
और इसी प्रकार से जब रिश्तों में सद्भावना होती है तो वहाँ पर सुख शांति सहज हो जाती है। तो खुद में सद्भावना लाना माना मेरे हेड हार्ट और हैंड्स में तीनों में कितना कोऑर्डिनेशन है।
बहुत अच्छा।
हेड माना दिमाग
जी,
वो चाहिए शांत और शीतल
जी।
हार्ट जो सिंबलाइज है स्नेह का, वो अपने प्रति भी प्यार और संसार में विश्व की आत्माओं के प्रति भी मेरा स्नेह, तब हम स्ट्रांग बनते हैं। और तीसरा हैंड्स जो प्रतीक है सहयोग का और जो प्रतीक है कार्य कुशलता का। हम सब मिलकर के सहयोग से जब कार्य करते हैं तो कार्य भी बहुत सहज और सरल हो जाता है। तो जब मेरे हेड हार्ट और हैंड्स तीनों में कोऑर्डिनेशन सद्भावना होगी तब मेरे सबसे पहले स्वयं में वो सद्भावना होगी और तब हम वो संसार में सद्भावना ला सकेंगे। इसलिए कहा कि शुरुआत अपने से करनी है
जी। और तभी हम वो पॉजिटिव सकारात्मक वाइब्रेशंस अपने आसपास क्रिएट कर सकते हैं और अपने आप हार्मनी उसे क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। हार्मनी और सद्भावना की सामाजिक रूप से या बड़े तौर पर अगर वैश्विक रूप से हम देखें तो क्यों जरूरी है, हार्मनी क्यों जरूरी है?
हार्मनी आज के वर्तमान समाज में कहें या विश्व में क्यों जरूरी है
जी?
क्योंकि आज एक दुनिया की तरफ हम नजर दौड़ाएं तो चारों तरफ दुख, अशांति, अराजकता, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना, ये सब बहुत बढ़ता जा रहा है।
बिल्कुल।
और इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है जिसके कारण व्यक्ति खुद भी अपने जीवन के अंदर शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा। तो जब मेरे भीतर ही शांति नहीं है तो बताइए मैं विश्व में शांति कहाँ से ला सकती हूँ?
बिल्कुल सही।
तो जब ये सब बातें विश्व में इतनी बढ़ती जा रही है, इसके स्थान पर यदि हम एक सद्भावना ले आए तो ये सारी बातें जो वर्तमान समय में हम दुनिया में देख रहे हैं ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसलिए आज इसकी अति आवश्यकता है।
इसकी पारिवारिक रूप में भी और सामाजिक रूप में भी अति आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाहूंगी कि हमारे अपने पर्सनल लाइफ में हार्मनी कितनी सहायक है, कितने फायदे हैं हार्मनी से हमारी पर्सनल लाइफ में?
पर्सनल लाइफ में इसके बहुत फायदे हैं
जी।
जब इस एक सद्भावना की वैल्यू कहें, इस मूल्य को हम अपने जीवन में लेकर के आते हैं तो सबसे पहले जो आज हम सबका एक लक्ष्य रहता है कि मुझे शांति मिले, खुशी मिले, वो मुझे प्राप्त होती है
जी।
क्योंकि हर कार्य की शुरुआत करने से पहले उस सद्भावना से उस पॉजिटिव थॉट को क्रिएट करके करते हैं तो हमारा जीवन एक सुखमय और शांत बनता जाता है। तो ये सबसे पहले मुझे मेरे पर्सनल जीवन में सबसे बड़े फायदे होते हैं
जी। बिल्कुल। और सामाजिक रूप में हम इसके लिए क्या फायदे तय कर सकते हैं? सामाजिक रूप में,
समाज में भी इसके उसी प्रकार से बहुत ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि समाज भी बनता तो किससे है, हम सबसे ही मिलकर बनता है।
बिल्कुल।
हम सब मिलकर ही समाज को बनाते हैं। यदि मेरी खुद के प्रति और समाज के प्रति शुभ भावना और शुभकामना होगी तो उन्हीं विचारों से वैसे मैं समाज का निर्माण करूंगी। यदि मेरे अंदर सद्भावना होगी तो मैं समाज में भी सद्भावना लाने का योगदान दे सकती हूँ।
बिल्कुल। पर कभी कभी ऐसा होता है आपसी संबंधों में, हम चाहते तो हैं बहुत कि सद्भावना हो, हमारे आसपास का वातावरण अच्छा हो, हम चाहते हैं पर फिर भी नहीं हो पाता है, नहीं ला पाते हैं हार्मनी, क्यों ऐसा क्यों?
इसका ये मुख्य कारण है, यही हम देखते हैं आज के इस समाज के अंदर, विश्व के अंदर
जी,
कि चाहते हुए भी वो सद्भावना क्यों दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है
जी।
हम प्रयास भी करते हैं कि वो सद्भावना बनी रहे लेकिन वो जितनी जिस रूप में दिखाई देनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे देती, क्योंकि उस सद्भावना के आधार पर ही हम एक जिसको कहें सुंदर सुखद विश्व का निर्माण कर सकते हैं
जी।
तो आज उसका सबसे बड़ा कारण यही, यदि हम देखें कि वर्तमान समय में जो नेगेटिविटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है
जी।
नेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ दूसरों की कमियां कमजोरियां बहुत जल्दी हम देख लेते हैं और बहुत जल्दी हम आवेश में एक्साइट हो जाते हैं। अभिमान देखिए, बदले की भावना, ईर्ष्या, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो कारण हम चाह कर भी सद्भावना को जितना अपने जीवन में अपनाना चाहिए या जिसका मुझे सहयोग देना चाहिए वो दे नहीं पाते। इस पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगी कि एक बार एक घोंसले में एक जुड़वा कबूतर रहते थे और वो बड़े प्यार से उस घोंसले में रहते थे और एक बार उन्होंने नया घोंसला बनाया, दोनों ने मिलकर के घोंसला बनाया और जैसे ही उस घोंसले में गए तो उन्हें लगा कि उस घोंसले के अंदर कुछ बदबू अर्थात स्मेल सी आ रही है।
अच्छा,
तो दे आर नॉट कम्फर्टेबल इन दैट घोंसला। तो वो कारण जानने लगे कि क्यों बदबू आ रही है, समझ में नहीं आया। आखिर उन्होंने फिर दूसरी जगह जाकर के एक और घोंसला बनाया
जी।
लेकिन दोनों कबूतर हैरान, सेम स्थिति वहां पर भी, वहां पर भी उस घोंसले में भी वही बदबू। वो स्थिति को समझ नहीं पाए, कारण को जान नहीं पाए। दोनों कबूतरों ने वो मोहल्ला, वो एरिया, स्थान छोड़ दिया, दूसरी जगह जाकर के नए नए तिनकों से, नए नए उनसे फिर से एक बहुत सुंदर छोटा सा घोंसला तैयार किया
जी।
लेकिन ये क्या, यहाँ पर भी
वही स्थिति,
वही स्थिति। आखिर किया क्या जाए, इसका क्या कारण है वो समझ नहीं पाए। आखिर दोनों कबूतर मिलकर के अपने वृद्ध अनुभवी कबूतर के पास गए और उस कबूतर के पास जाकर अपनी सारी परिस्थिति उनको बताई। तो कबूतर ने बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुना और कहा ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। और जब वो घोंसलों में आए तो वही बात उन्होंने भी देखी कि उनमें क्या है, स्मेल आ रही है
जी।
तब उन्होंने उनको कहा, जो अनुभवी व्रत कबूतर था, कि ये जो बदबू आ रही है ये बाहर से नहीं है, ये तुम्हारे भीतर से है, अंदर से है। क्योंकि जब तुम खुले में रहते हो तो बदबू का पता नहीं चलता और जैसे ही आप घोंसलों में आते हो तो वो बदबू का पता चलता है
जी।
तो उन्होंने बहुत अच्छी एक शिक्षा प्रेरणा दी कि सबसे पहले तुम अपने भीतर को साफ करो। क्यों सद्भावना नहीं हो रही, क्योंकि आज हम भी इस संसार में, विश्व में और लोगों की कमियों को देख रहे हैं
जी।
उस नेगेटिविटी का वर्णन कर रहे हैं, उसकी बदबू को और फैला रहे हैं। तो जब हम सद्भावना को अपनाएंगे, अपने चिंतन की धारा को बदलेंगे तो यही संसार बहुत सुंदर और खूबसूरत बन जाएगा।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने और इतनी अच्छी कहानी सुनाई। इससे हमें ये पता चलता है कि हम अगर देखें तो गुण देखें, गुण ग्राहक ही बने, और अवगुणों को देखते हुए, उनके प्रति, दूसरों के अवगुणों को देखते हुए, उनके प्रति सहानुभूति रखते हुए चले, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे वैमनस्य जैसे भाव मन में ना लाए तो एक सद्भावना अपने आसपास के परिवेश में क्रिएट कर सकते हैं। ये तो रही समाज के परिवेश की बात, एक छोटे तौर पर, एक बड़े रूप में अगर हम सोचें विश्व में सद्भावना कैसे लाई जा सकती है, बड़े रूप में अगर हम सोचें
तो विश्व में सद्भावना लाने की भी जैसे बताया कि शुरुआत हमको अपने आप से करनी पड़ेगी
जी। बिल्कुल,
जैसे बहुत अच्छी बात कही जाती है, आपको लौटकर वही मिलता है जो आप दूसरों को दिया करते हो।
बिल्कुल सही,
यदि आपने कांटों की राह चुनी तो आपको कांटे ही मिलेंगे, यदि फूलों की राह चुनी तो फूल ही मिलेंगे।
बिल्कुल सही।
अब वो मेरे पर निर्भर करता है कि विश्व के अंदर वो सद्भावना और हार्मनी लाने के लिए मैंने चुना क्या है
जी।
जो मैं चुनूंगी वही मैं विश्व को दूंगी और उससे ही विश्व का नव निर्माण कर सकेंगे।
बिल्कुल,
इस पर भी एक छोटा सा एग्जांपल आपको शेयर करना चाहेंगे जो आप सभी ने सुना भी होगा, बहुत प्रैक्टिकल है
जी।
कि एक बार एक व्यक्ति जो भगवान का बहुत परम भक्त था, बहुत भक्ति किया करता था और उसने भक्ति, उसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए
जी।
और प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति को कहा, तुम जो मांगो मैं तुम्हें वो वर दूंगा। व्यक्ति भी बहुत खुश कि चलो मेरी भक्ति से मुझे जो चाहिए मुझे मिल सकता है, क्योंकि वो भगवान मेरे पर प्रसन्न है। तो उस व्यक्ति ने भगवान से पूछा अच्छा मैं जो मांगूं का आप दोगे? भगवान ने कहा अवश्य, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जो तुम मांगोगे वही तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। अच्छा। जो तुम पाओगे उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अब वो सोच में पड़ गए, जो मैं मांगूंगा उसका डबल फायदा पड़ोसी को।
बिल्कुल।
तो उसने सबसे पहले कहा मुझे घर चाहिए। भगवान जी ने कहा तथास्तु, बहुत सुंदर घर, लेकिन ये क्या, खिड़की से देखा तो सामने दो घर। उसने एक अच्छी सी कार मांगी, लेकिन ये क्या, मेरे बंगले के आगे तो एक ही कार खड़ी है और उसके पड़ोसी के तो
दो कार।
ऐसे करते करते बहुत सारी चीजें मांगी, लेकिन ये क्या, जो मैं मांगता उसका डबल पड़ोसी को मिल जाता। वो सोच में पड़ गया, अब मैं क्या करूं। जिसको कहते हैं कि आज हमारे मन के भाव, आखिर उसने भगवान से मांगा कि मेरी एक आंख ले लो।
अच्छा।
तो पड़ोसी की दोनों आंखें चली गई। ये कहानी बहुत कॉमन है और हम सब सुनते हैं, लेकिन इसके आगे देखिए, दूसरा पड़ोसी भी, वो भी भगवान का भक्त था, वो भी भगवान की बड़ी भक्ति किया करता था, लेकिन एक दिन उसकी भक्ति से भी भगवान प्रसन्न होकर के उसको दर्शन दिए और कहा जो वर मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो ये व्यक्ति सोचने लगा कि मैं मांगू तो क्या मांगू। तो इसने बहुत अच्छे शब्द उस भगवान को कहे कि मुझे वो देना, उस बात से मुझे भरपूर कर देना, वो शक्ति देना जिससे मैं मेरे उस व्यक्ति की सारी गलतियों को माफ कर सकूं। क्योंकि इस व्यक्ति का तो कोई कसूर ही नहीं था, जिसकी दोनों आंखें चली गई। इसने कहा मुझे वो वर दीजिए, मेरे हृदय को, मेरे जीवन को आप क्या कीजिए, गुणों से भर दीजिए। तो जैसे पहले व्यक्ति के प्रति भगवान की शर्त थी कि जो तुम मांगोगे पड़ोसी का
दुगना हो जाएगा,
इस व्यक्ति के साथ भगवान जी की शर्त थी जो तुम मांगोगे तुम्हारे इस पड़ोसी को उसका आधा मिलेगा।
जी।
तो इसने मां सोचिए क्या मांगा होगा भगवान जी से, क्या मांगा होगा। तो इसने कोई
जी
धन दौलत कार बंगला सुख सुविधाओं के साधन नहीं मांगे।
जी।
इसने मांगा मेरा हृदय, मेरा जीवन सद्भावना से भर दीजिए। तो जो मुझे सद्भावना मिलेगी उसकी आधी सद्भावना उसे पड़ोसी को भी मिलेगी। तो इस भाव से ही हम अपने पूरे संसार को सुखमय बना सकते हैं।
जैसे बहुत सुंदर उदाहरण, इससे हमें पता चला कि अच्छी भावना, सकारात्मक सोच कितनी मायने रखती है।
जी।
आपकी प्राप्तियां उस पर निर्भर करती है, आपकी सकारात्मक सोच पे।
जी हाँ।
तो ऐसी और क्या क्या क्वालिटीज है सद्भावना लाने के लिए जीवन में और हमारे आसपास के परिवेश में, और किन किन क्वालिटीज की जरूरत है?
सद्भावना जैसे एक मुख्य है, और जब जैसे बताया कि कोई कोर वैल्यू हमारे जीवन में आ जाती है तो और बहुत सारी वैल्यूज अपने आप आ जाती है।
जी।
तो यदि हम सद्भावना को ले आते हैं तो उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हरेक के प्रति मेरी शुभ भावना और शुभ कामना हो।
जी।
और उस शुभ भावना और शुभ कामना को पाने के लिए हरेक के प्रति मेरा धैर्य, मेरा लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि धैर्य पाने को तुझे स्वयं पैर बढ़ाना होगा, पथ के पत्थर तुझे स्वयं दूर हटाना होगा, दूसरा कौन तेरे प्रश्नों के उत्तर देगा, तुझे स्वयं अपने मन में दीप जलाना होगा। तो आज से यदि हम सभी अपने ही मन में यदि सद्भावना के दीप जला दें तो एक दीप से अनेक दीप जलते हुए
प्रज्वलित हो जाएंगे
और सारे विश्व के अंदर सद्भावना सहज आ जाएगी।
बिल्कुल, बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर तरीके से इसके महत्व पर आपने प्रकाश डाला और हमारे दर्शकों को अवगत कराया। लेकिन इसके कुछ बाधक तत्व भी है जो समाज में सद्भावना और हार्मनी को आने नहीं देते हैं, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी है जिसके ऊपर हम जानना चाहेंगे आपसे।
जिसे बताया नेगेटिव फैक्टर यही है कि एक दूसरे के प्रति आज हमारी नफरत की भावना होती है, ईर्ष्या की भावना होती है, क्रोध कितना बढ़ता जा रहा है, बदले की भावना है, जिसमें कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि हम खुद भी नहीं जीते और औरों को भी जीने नहीं देते। हम मेरा सब बिगड़े जैसे उसका देखा एग्जाम्पल, हम औरों का भी उसी प्रकार से जाते हैं और उन्हीं चिंतन के कारण क्या होता है, ना हमारे अंदर वो सद्भावना आ पाती है, ना वो विश्व के अंदर। तो ऐसी ये बहुत सारी बातें हैं, केवल एक सद्भावना को ही लेकर के आने से ये सारी बातें आज हम देखेंगे समाज से और विश्व से धीरे धीरे कम होती जाएगी,
कम होती जाएगी। दीदी, जैसा कि हम जानते हैं आप आध्यात्मिक ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी हुई है और वो भी यही कार्य कर रहे हैं विश्व में सद्भावना स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए। तो हम उस बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि काफी वर्षों से आप इसमें सेवाएं दे रही है और इस संस्था से जुड़ी हुई है, तो अपने कुछ अनुभवों से दर्शकों को रूबरू कराइए।
जी हाँ, ये बचपन से ही लेकर के जी इस आध्यात्मिकता के बहुत जीवन के अंदर सुंदर अनुभव किए हैं और उन अनुभव से लेकर के ही आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सबसे पहले यदि बचपन को देखिए तो बचपन के अंदर हम सभी का यही लक्ष्य रहता है कि अच्छे से पढ़ाई पढ़ें। तो वो यदि स्टूडेंट लाइफ के अंदर यदि देखेंगे तो सबसे ज्यादा आवश्यकता होती कंसंट्रेशन की, और आज हम देखते हैं वो स्टूडेंट्स में कितना कम है, क्योंकि बाहर की भौतिकता के अंदर बहुत ज्यादा उनका अट्रैक्शन है। तो ये कंसंट्रेशन एकाग्रता लाने के लिए वो परम स्रोत, परम शक्ति, परमात्मा के साथ जितना मेरा कनेक्शन होगा तो शक्ति अपने आप आती जाती है और बुद्धि की लाइन इतनी क्लीन और क्लियर हो जाती है तो मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज अनुभव हो जाती है।
बहुत सुंदर।
दूसरा, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो सबसे ज्यादा हमने अपने जीवन के अंदर ये अनुभव किया कि हर कदम में, हर पल में यदि मेरा कोई साथी है तो वो भगवान है, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं। जैसे दुनिया में तो लोग गाते हैं, जिसका साथी हो भगवान उसको रोके क्या आंधी और तूफान। लेकिन मैंने अपने पर्सनल जीवन में अनुभव किया कि कोई भी कैसी भी बात यदि आती है तो कैसे वो सर्वशक्तिवान की मदद से वो कार्य सहज, सरल और सफल हो जाता है, और उन्हीं की शिक्षाओं से, मार्गदर्शन से आज भी हम आगे बढ़ते थे।
जी जी बिल्कुल। और जैसे कि इस संस्था में सभी बहनें सम्मिलित रूप से वैसे संस्था को चला रही हैं, अलग अलग सेंटर्स पर सभी बहनें साथ में मिलकर इस संस्था का संचालन करती है, तो आप आपस में कैसे सद्भावना और हार्मनी, आप अपना वो भी पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकती है कि किस तरह इतना अच्छे से संचालन कर लेते हैं सद्भावना के साथ।
जी हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा
जी,
कि जब हम मिलजुल के रहते हैं तो आपस में किस प्रकार से सद्भावना को बनाए रखते हैं।
जी,
तो वो सद्भावना को बनाने के लिए कोई बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं, बस आप अपने जीवन में यही लक्ष्य रखिए कि मुझे हरेक की विशेषता देखनी है। जब हरेक की विशेषता को देखते जाएंगे तो वो एक सुंदर सी माला बन जाएगी, और वो माला ही एक सद्भावना का प्रतीक है। हरेक की विशेषताओं को देखते हुए तो आपस में स्नेह भी बना रहता है और एक दूसरे का सहयोग भी मिलता है, और अपने जीवन के अंदर जो चाहते खुशी वो भी हमें सहज मिल जाती है।
जी बिल्कुल, बहुत सुंदर दीदी, सच में आपने इतने सुंदर तरीके से, इतने सुंदर ढंग से, स्पष्ट शब्दों में इतने अच्छे तरीके से सद्भावना को अपने पर्सनल लाइफ के अनुभवों से और अपने ज्ञान के आधार पर, नॉलेज के आधार पर हमारे दर्शकों को अवगत कराया, इसके महत्व पर प्रकाश डाला, ये क्यों जरूरी है आज समाज में, इसे आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
अंश में यही एक शब्द अंत में कहूंगी,
बिल्कुल,
पंखों में यदि जान है
जी
तो आसमान दूर नहीं
जी,
वो आसमान को भी हम सहज प्राप्त कर सकते हैं
जी।
श्रद्धा में यदि जान है तो भगवान हमसे दूर नहीं, और यदि रिश्तों में जान है तो सुख शांति दूर नहीं, और उस सुख शांति से ही विश्व के अंदर सद्भावना ला सकते।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, जैसे कि अभी हमने देखा और सुना, हमारी दीदी ने भी अपने पर्सनल अनुभवों से इतने सुंदर तरीके से बताया कि कैसे सद्भावना हमारा चारित्रिक, सामाजिक और पारिवारिक उत्थान करने में महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों दुनिया में जो वस्तु कम प्राप्त हो, जो अद्वितीय हो, उसका मूल्य बहुत अधिक होता है। उसी तरह जिसका जीवन आदर्श हो, बेमिसाल हो, नैतिक मूल्यों से भरा हुआ हो, उसका भी समाज में स्थान उतना ही उच्च होता है। तो मैं आपसे यही आशा करती हूँ, हमारी तरफ से सहयोग जारी रहेगा और आपसे भी मैं यही आशा करती हूँ कि आपका सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे। तो हम अगले एपिसोड में फिर से नए विषय, नए अनुभवों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
तू दीप से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम, एकता, शांति, सत्य, सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा।